हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में साइट की ओर बढ़ गया और फास्ट ड्राइव करके साइट पर गाड़ी रोक दी। और गुस्से से भरा हुआ वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकलकर वो तेज कदमों से अंदर चला गया। झलक ने उसे जाते हुए देखा, गहरी सांस ली। आदित्य का इस तरह का बर्ताव ही उसे कहीं न कहीं एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था और वो भी उसके पीछे पीछे अंदर जाकर सारा काम चेक करने लगी थी। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना इस वक्त बहुत गुस्से में अपने होमटाउन की जगह झलक के होमटाउन में था और एक बहुत बड़े होटल में ठहरा हुआ था। अपने कमरे में बेचैनी से छत को घूरते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूम रहा था। झलक का आदित्य का हाथ पकड़कर उसके सामने से चले जाना, ये सब याद आते ही उसके गुस्से और नफरत की कोई सीमा नहीं रह जाती थी। वो सोच रहा था कि ये लड़की कितनी ज्यादा गिर गई है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। बिना कुछ सोचे समझे उस राणा के साथ रह रही है, बल्कि उस पर अपना हक भी जता रही है, वो भी पब्लिकली। क्या राणा को ये नहीं पता कि इस तरह के अवैध रिश्ते छुपाकर रखे जाते हैं, दुनिया को दिखाई नहीं जाते? सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन बार बार आदित्य और झलक का साथ होना उसके दिल को गवारा नहीं था। उसका दिल बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कई बार फोन उठाया, कुछ मैसेज टाइप किए, फिर डिलीट कर दिए। कभी सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। उसके शरीर की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों के सामने आदित्य और झलक का एक साथ होना जा ही नहीं रहा था। वो बड़बड़ाया, आया तो मैं यहां सिर्फ उसे धमकी देने के लिए था कि अब मेरे रास्ते में मत आना। लेकिन आदित्य का हाथ पकड़कर उसके सामने से जाना, उस पर हक जताना, न जाने क्यों ये बात मुझे इतनी बुरी क्यों लग रही है। ऊपर से आदित्य के सामने ही उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो झलक को बिना सबक सिखाई यहां से नहीं जाएगा। हालांकि दादी ने उसे कहा भी था कि वो एक नाजायज लड़की है, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही पता लगाया था कि झलक किसी इंडस्ट्री में काम करती है। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो राणा के लिए उसकी इंडस्ट्रीज में काम करती है, और शायद इसीलिए आदित्य की पर्सनल असिस्टेंट है। शायद इसीलिए वो आदित्य के साथ बार बार दिखती है, और इसके लिए उसने इतना महंगा नेकलेस तक खरीद लिया। अपने दिमाग में उसने न जाने कितने अजीब गरीब आइडिया बना लिए थे। लेकिन फिर भी झलक का आदित्य के साथ होना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अगली सुबह वो फिर से उस राणा की इंडस्ट्रीज जाएगा और अपने तरीके से झलक से बात करेगा, क्योंकि इतने लोगों से पूछने के बाद भी उसे झलक के घर का एड्रेस नहीं मिल पाया था। वो कहाँ रहती है, कहाँ सोती है, कुछ पता नहीं चल पाया था। इसी बेचैनी में उसे पूरी रात होटल में गुजारनी पड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर झलक ने किसी भी बात को याद किए बिना पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक की। उसने सभी वर्कर्स को अच्छी तरह गाइड किया कि किस समय तक कौन सा काम पूरा होना चाहिए, फिर एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। आदित्य हैरानी से झलक के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। इतनी सारी बातें होने के बाद भी आखिर ये लड़की इतनी आसानी से नॉर्मल होकर काम कैसे कर सकती है? आदित्य राणा का दिमाग तेजी से चल रहा था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। झलक ने सारी तहकीकात करने के बाद जब देखा कि सब कुछ ठीक है, तो उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान आ गई। कम से कम काम तो सही तरह से हो गया था। वो उठकर खड़ी हुई और आदित्य राणा की तरफ देखकर बोली, मिस्टर राणा, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। ये सुनकर आदित्य थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर खड़ा हुआ और चुपचाप झलक के साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। उसने स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा दी। झलक ने जिस तरह उसके सवालों के बाद भी ठंडा रिएक्शन दिया था, वही बात आदित्य को अंदर ही अंदर पूरी तरह परेशान कर रही थी, और वो चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था, ना ही अपने अंदर की झुंझलाहट किसी पर उतार पा रहा था। झुके हुए चेहरे के साथ वो वहीं बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी भी पिछली बात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अभय और कबीर इस वक्त एक साथ बैठे हुए थे। दोनों के दिल और दिमाग पर एक अलग ही तरह का बोझ था। दोनों इस वक्त काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि पहली बार उनके भैया आदित्य राणा को कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन उनके हिसाब से वो लड़की धोखेबाज निकली। अभय गुस्से से दांत भींचते हुए कबीर को देखकर बोला, मुझे आखिर समझ में नहीं आ रहा है। भाई किसी भी लड़की के साथ अगर बिजनेस डील करना चाहें तो उसकी जन्म कुंडली तक निकलवा लेते हैं, उसके बारे में सारी जानकारी पता कर लेते हैं, फिर इस लड़की के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पाए? आखिर चल क्या रहा है भाई के दिमाग में? भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इस वक्त अभय पूरी तरह गुस्से से भरा बैठा था। तब कबीर ने खुद को थोड़ा सा शांत किया और बोला, मैं अभी उसे फोन करके पूछता हूँ कि आखिर वो है कहाँ। अब मैं उसे उस लड़की से बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगा। यार मैं भी बहुत प्यार करता हूँ आदित्य से, और फिर लड़कियों का मामला तो होता ही बुरा है, इसीलिए तो मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। मैं कभी भी किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आऊंगा। ये कहते हुए कबीर की जबान हल्की सी हकलाने लगी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने अनामिका का चेहरा घूम गया था। फिलहाल गहरी सांस लेते हुए उसने आदित्य को फोन लगा दिया। आदित्य ने कबीर का फोन आते देखा तो तुरंत काट दिया, क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था और साथ ही उसका इरादा भी किसी से बात करने का नहीं था। फोन कट होने पर कबीर को कुछ अजीब लगा। उसने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन आदित्य ने फिर फोन नहीं उठाया। लगातार 3-4 कॉल के बाद जब कबीर ने हार नहीं मानी, तब जाकर आदित्य ने फोन उठा लिया। फोन स्पीकर पर था और वो गाड़ी चलाते हुए बोला, क्या बात है, क्यों फोन कर रहे हो तुम? कबीर जल्दी से बोला, वो एक्चुअली मैं तुमसे ये जानने के लिए फोन कर रहा था कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ चले गए। तुम्हें घर आ जाना चाहिए, हम इतनी बड़ी बात को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल आज टूट गया होगा। जैसे ही कबीर ने बेवफा जैसे लहजे में इस तरह की बात कही, आदित्य ने एक नज़र झलक की तरफ देखा, जो बेपरवाही से अपना फोन स्क्रोल कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। आदित्य हल्के मगर सख्त स्वर में बोला, तुम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। तभी दूसरी तरफ से कबीर की आवाज फिर आई, देखो आदित्य, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, वो झलक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता उसका नाम झलक है या आकांक्षा, लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उस लड़की की तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निकालकर फेंक दो उसे अपनी जिंदगी से, वो एक नंबर की बदचलन है। जैसे ही कबीर ने गुस्से में फोन पर झलक के लिए अपशब्द कहे, झलक के कान पूरी तरह खड़े हो गए। उसने धीरे से फोन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ठंडा लेकिन खतरनाक गुस्सा उतर आया। गाड़ी का माहौल एकदम गर्म हो चुका था। झलक की आंखों की तपिश साफ महसूस की जा सकती थी। आदित्य को भी अचानक अजीब सी गर्मी अपने शरीर में महसूस होने लगी। वो समझ गया था कि कबीर की बातों से झलक को बहुत गुस्सा आया है। झलक के अंदर जैसे आग भड़क उठी थी। पहले उसे मनहूस कहा गया, फिर नाजायज, और अब बदचलन जैसे शब्दों से पुकारा जा रहा था। ये सब सुनकर उसके दांत आपस में भींच गए।
अचानक उसने आगे बढ़कर आदित्य के हाथ से फोन ले लिया और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, जुबान संभाल कर बात करो कबीर, होश में रहो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें बोलने लायक भी ना छोड़ूं। जैसे ही झलक ने इतने खतरनाक अंदाज में ये कहा, कबीर के दांत सच में आपस में बजने लगे थे।